ओम शांति। हम सभी का जीवन क्या तुलना करते हैं बाबा जीवन की, किससे? हीरे समान है। हीरा बहुत कीमती या सबसे कीमती? तो क्या हमें ऐसा लगता है कि सचमुच हमारा जीवन बहुत सुंदर हो गया है? भाई बताओ, लगता है? उन्हें ना देखो, आपको ही बताना, लगता है? लगता है या नहीं? नहीं लगता, थोड़ी गड़बड़ है अभी। श्रेष्ठ ज्ञान मिला है। श्रेष्ठ ज्ञान का अर्थ है सहज राहें मिल गई, केवल मुक्ति, जीवन मुक्ति की नहीं, जीवन कैसे सुखपूर्वक जिए। बहनों का क्या हाल है? मेरा प्रश्न सुन के कईयों के चेहरे थोड़े ढीले हो गए। नहीं है सुख शांति से भरा जीवन? है, पूरा भरना है इसे। हाँ, वही जिनका नहीं है, थोड़ा सा दिख रहा है चेहरों से कि अभी थोड़ी सा संघर्ष है और इसको अच्छा बनाना है। अच्छा जीवन उसी का बनता है जो अपने को चेंज करते हैं। ये तो बहुत सोचते हैं मुझे अपने को बदलना है, लेकिन ज्ञानी आत्माओं को सोचना चाहिए मुझे अपने में क्या परिवर्तन लाना है, क्या का उत्तर होना चाहिए। मुझे बदलना है, बदलना है, कहते कहते युग बीत गए। समझ गए युग? कई युग 20 साल हो गए। ये पता नहीं है कि मुझे क्या अपने में बदलाव लाना है। सबसे सूक्ष्म बदलाव अभी न केवल सुनेंगे लेकिन अभी से कर देंगे, भावनाओं का परिवर्तन। कलयुग के अंत में जो संबंध है मनुष्य के आजकल, उसमें सबसे ज्यादा बिगड़ाव भावनाओं में आ गया है। सोचो, सोच लो। कई तो ऐसे हैं जिन्हें कोई भी अच्छा नहीं लगता दुनिया में। सताया होगा दो चार ने, पर सारे बुरे हैं। हम यदि अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो ये संकल्प बदलना पड़ेगा। और क्या करना होगा? सब बहुत अच्छे हैं, भगवान के बच्चे हैं सब। हमारे लिए कोई खराब हो सकता है, पर सबके लिए तो कोई खराब नहीं होता है। बहुतों की ये बात सामने आती है, फलाना व्यक्ति केवल मुझसे दुश्मनी रखता है, बाकी सबसे बहुत प्यार। परिवारों में जब बहनें ये कहती हैं तो देखो, सभी बहनें बैठी हैं, मैं एक ही बात कहता हूं कि विचार करो। सबसे तो वो बहुत प्यार से रहता है, आपसे ही क्रोध और टेढ़ी नजर क्यों क्यों होती है? बोलो बोलो, माताओं से पूछ रहे हैं, जानते हैं, आपको जानना ही चाहिए, जो नहीं जानते उन्हें जानना है। कर्मों का हिसाब किताब। किसी के साथ भी बिना कारण के कुछ भी नहीं हो रहा है। हम अचानक ठोकर खा के भी गिर गए ना, उसके पीछे भी कारण है। हम दोष देते रहे किसने यहां ये पत्थर गाड़ दिया, दोष से काम नहीं चलेगा। इस हिसाब किताब को अगर चुक तो करना है, योग बल तो चाहिए ही, लेकिन भावनाओं की शक्ति, श्रेष्ठ भावना जिसे शुभ भावना कहते हैं, उसका भी बड़ा महत्व है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी दृष्टि आत्मा है, बहुत अच्छे आत्मा है, ऐसा कर देना है, परिवर्तन देखेंगे आप। कईयों के घरों में छोटे बच्चे हिसाब लेने आए हैं आजकल, बहुत केस होने लगे हैं। सबको ये सत्य कर्मों की गुह्य गति का राज जानना चाहिए, सुन ले ध्यान से, ताकि आप परेशान न हो। बच्चे ऐसा पैदा हो रहे हैं जो जन्म से ही माँ बाप को खुशी तो क्या देंगे, अत्यंत दुखी हो गया है परिवार उनका जन्म लेते ही। ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं, न ब्रेन है, 4 साल हो गए न बोलते हैं, गुमसुम पड़े हैं। बच्चों में तो कई फीलिंग्स होती है ना, बहुत गुड, कुछ नहीं है। तो सभी को ये राज मालूम होना चाहिए। अब राज सुन लो, एक ही बार अव्यक्त बाबा ने बताया है, बार बार नहीं आई है ये बात, इसलिए बहुतों को पता नहीं है। अव्यक्त महावाक्यों से है, हिसाब किताब, कर्मों के हिसाब किताब, चुक्त होने के कई तरीके हैं, उनमें से एक होगा एंड में जल्दी जल्दी जन्म, जल्दी जल्दी मृत्यु। क्योंकि जन्म लेने में और देह छोड़ने में ही आत्मा को सबसे ज्यादा सजाएं मिलती हैं। तो अब ये खेल हम सृष्टि पर देख रहे हैं और 2-4 साल में ये बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए परेशान, परेशानी वाली तो बात है। किसी के घर में 10 साल के बाद बच्चे ने जन्म लिया हो और वह ऐसी स्थिति में हो और 2 साल के बाद चला जाए सबको छोड़ के, तो कष्ट की बात तो है, परंतु इस कर्मों की गति के रहस्य को जानकर हमें इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं होगा। आगे आ जाओ, माता को आगे भेज दो भाई, स्वीकार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना बात। तो एक बात मैं हर क्लास में कह देना चाहता हूं और सभी अपने को उसके लिए तैयार रखें। हाँ, सभी सुन ले माता, इधर उधर नहीं देखेंगे अब। स्वीकार करना, बहुत चीजें इस संसार में ऐसी हो रही हैं और होंगी जिन्हें स्वीकार करना ही होगा। स्वीकार नहीं करेंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। जिन चीजों पर हमारा अधिकार नहीं है उन्हें स्वीकार करेंगे तो चेक करेंगे भावनाएं कैसी हैं, कौन कौन खराब लगते हैं, यही देख लो, सीधा प्रश्न है। कौन कौन शत्रु प्रतीत होते हैं, कुछ परिवारों में भी हैं, कुछ आसपास के परिवारों में हैं। एक एक गृहस्थी का तो लंबा विस्तार होता है ना, देख लो कौन कौन खराब नजर आते हैं, अब उन्हें अपना मित्र बनाना है ताकि वो आपके जीवन की यात्रा को सुखद बनाने में मदद कर सके। 2 बहुत अच्छी बातों का अभ्यास करेंगे, सभी करेंगे, यहीं कर लेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, और वो है क्षमा याचना। क्षमा याचना के बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देखे गए हैं। क्षमा याचना कैसे, एक व्यक्ति बहुत बीमार है, दवाइयां काम नहीं कर रही, डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा, उसने क्षमा याचना की सवेरे उठकर, मैंने पूर्व जन्मों में जिनको भी कष्ट दिया हो सच्चे मन से क्षमा चाहती हूँ, बाबा से भी क्षमा मांग ली, हल्के होने लगेंगे, हर चीज में हल्के होंगे, जो आपके पीछे पड़ा है संसार में उससे भी मन ही मन सवेरे उठ के 7 दिन तक क्षमा याचना कर लो, संबंध स्वीट होने लगेंगे। दूसरी एक बहुत अच्छी बात सबको करनी है, जीवन की यात्रा को सुखों से भरने के लिए उन सभी आत्माओं को धन्यवाद देंगे दिल से, जिन्होंने द्वापर से जन्म जन्म हमें मदद की है। प्रकृति को भी शुक्रिया करेंगे, प्रकृति ने भी हमें बहुत मदद की है या नहीं, बहुत मदद की है प्रकृति ने। शुक्रिया जितना प्रकृति को करेंगे क्या फायदा होगा, दो फायदे, बोलो क्या फायदा होगा। प्रकृति सहयोगी बनेगी आने वाले समय में भी अब भी, और दूसरा ये तन प्रकृति का है ना, ये स्वस्थ रहेगा, बड़ी मदद मिलेगी। शुक्रिया और क्षमा भाव, लेकिन दिल से, इन दोनों का बहुत बहुत महत्व है। समझ रहे हैं ना सभी, शुरू कर देंगे। क्षमा याचना तो 7 दिन ही काफी है, लेकिन शुक्रिया तो करना ही चाहिए सदा। जिन्होंने हमें मदद की है, जो अब मदद करते हैं, जो हमारे अच्छे साथी सहयोगी हैं, उनको शुक्रिया, तन को भी शुक्रिया। एक बहन ने वंडरफुल अनुभव सुनाया मुझे अभी 4 दिन पहले, टीचर है वो, उसको कई बीमारियां लग गई। अब बताया तो मैंने ही था उसे, लेकिन मैं तो भूल गया था। अब वो आके मुझे बताती थी, आपने मुझे ये बताया था और कितना अच्छा हुआ, पेट में 7.5 इंच की गांठ, अभी डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के नाम से तो डरते ही हैं, सभी डरते हैं भाई, काट फीट के कर तो दे, लेकिन उसके बाद जो भुगतना पड़ता है वो थोड़ा भारी होता है। तो कहा मैं तो अपनी जो रसोली हो गई थी उसको भी धन्यवाद दिया कि अभी निकल जाओ भाई, बहुत हो गई, शरीर को भी धन्यवाद दिया, पाचन शक्ति को धन्यवाद दिया। उसका इतना अच्छा अनुभव, जब चेक कराने गई दोबारा ऑपरेशन से पहले, तो वो गांठ वांठ थी नहीं वहां। मैं कहां चली गई भाई, ये तो जादू हुआ है क्या हो, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो जाता है क्या। फिर कहा पेट बहुत खराब रहने लगा, मैं अपनी पाचन शक्ति को, पेट को शुक्रिया करने लगी, वो ठीक हो गया। मैं भी करूंगा, मेरा भी गड़बड़ हो जाती है, हालांकि सिखाया मैंने ही था, लेकिन मैं तो भूल गया था। तो ये ऐसी चीजें हैं, हम हर चीज को अपना गुड फ्रेंड बना लें, हर चीज को। आपके पास पेन और डायरी भी तो है, ये ना हो तो आप अच्छी पॉइंट्स ना लिख सकें। बुद्धि है, आंखें हैं, मैं तो अपनी आंखों को बहुत शुक्रिया करता हूं, हजारों बार इन आंखों से तुमने भगवान को देखा, भले इन आंखों के पीछे तीसरी आंख भी है, लेकिन साधन तो यही है ना। तो शुक्रिया करेंगे तो ये सब चीजें हमारी साथी सहयोगी बनकर रहेंगी। तो सभी को अपने अपने जीवन में चिंतन करना है। यहाँ जब आप हैं मधुबन में तो बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, सुखी रहना मेरे अपने हाथ में है। सभी सोच लेंगे, भाई बहने सभी, बहने ज्यादा सोचेंगी, क्यों, सारा बोझ बहने रखती हैं सिर पे गृहस्थ का, भाइयों को फिर ही रखती हैं, तुम काम धंधा करो, इधर के हम मालिक हैं। थोड़ा सा सोचो अब, सुखी रहना, बोलो, अब चेक कर लो, चेक कर लो। कुछ चीजों में हमें हल्के होना ही पड़ेगा, कुछ चीजों में साक्षी होना पड़ेगा, कुछ चीजों में मदद करनी पड़ेगी, कुछ कहना पड़ेगा तो कहीं चुप रहना पड़ेगा, सब चीजें होंगी। लेकिन जब कहना भी पड़ेगा तो ये न सोचें कि जो मैं कहूं वो माना ही जाएगा, यहां परेशानियां होती हैं। अच्छी बातें कहना कर्तव्य है, अच्छी बातें सिखाना बहुत जरूरी है, चाहे बच्चे हैं चाहे आपके साथी हैं, लेकिन मानना न मानना उनका भी तो है ना कुछ, हो सकता है उनके संकल्प टकरा रहे हो, नहीं गलत, तुम गलत, बुद्धि स्वीकार न कर रही हो। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमारी राय बहुत सुंदर है और ये मानेंगे ही हमारी बात। बाबा से सीखें, क्या सीखेंगे शिव बाबा से इस संदर्भ में। शिव बाबा सुप्रीम टीचर बनकर आया, हमें सत्य ज्ञान देने आया, सब कुछ पढ़ाने आ गया, हमें पावन बनाने, संपूर्ण बनाने, श्रेष्ठ भाग्य देने, बहुत सुख देने के लिए आ गया। रोज समझाता है फिर भी कई कई सुनते नहीं है तो परेशान होता है। इतने साल हो गए तुम्हें समझाते समझाते, मानते ही नहीं, चलो मैं नहीं आऊंगा, अब तो छोड़ दिया, नहीं आता सोच लिया हो गए सुनते तो है ही नहीं मेरी लेकिन भगवान छोड़ता नहीं है, हमेशा अच्छी बातें सिखाता रहता है। उसे विश्वास है क्या कर्मातीत तो इनको ही होना है, यही मेरी महान आत्माएं हैं, मेरे महान कार्य नहीं करने हैं, यही सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे आज नहीं तो कल। तो इसलिए धैर्यवत है, साक्षी भाव में है। तो हम सब बाबा से ये बहुत अच्छी बात सीखते हैं, सभी पक्का कर लें, रिपीट कर रहा हूं, सुखी रहना मेरे अपने हाथ में, सब देख लें अपने को। अगर हम ये सोचते हैं ये व्यक्ति न हो तो सुखी हो जाएं, कई तो दुआएं देते हैं ये मरे तो हम सुखी हो जाएं, देते हैं या नहीं देते हैं, अब उसकी आयु बढ़ती जाती है, कहेगा क्यों मरूं, पूरा हिसाब लेके जाऊंगा, कर दिया हुआ है जब तक नहीं दोगे छोड़ूंगा नहीं पीछा। तो सवेरे उठकर बहुत गुड फीलिंग के साथ संकल्प करेंगे, मैं आत्मा बहुत सुखी हूं, इस संकल्प का जादू देखना आप। बाबा आपको पाकर मैं बहुत सुखी हो गई, सच्चे दिल से हो गए हैं सुखी, हुए हैं ये सच है, थोड़े बहुत बचे हैं उन्हें पूरा करना है हमें, बहुत सुख दे दिया है बाबा ने। कम से कम जब आप यहाँ तीन चार दिन या एक मास आते हो बहुत सुखी रहते हो ना, अब उस सुख को आगे बढ़ाना वो सीख लेना चाहिए, बहुत सुखी हो जाते हैं। ज्ञान सरोवर में ब्याज भट्टी पूरी सवेरे दो चार ने अनुभव सुनाया, ओह ऐसा आनंद तो जिंदगी में कभी नहीं आया, मुझे तो लगा द्वापर युग से कभी नहीं आया, ऐसा सुना रही बहने, होता है ना, ये भूमि ऐसी है मधुबन, यहाँ हम बैठे हैं ये कोई साधारण स्थान थोड़ा ही है, भगवान यहाँ आए बारंबार आए, उनकी दृष्टि पड़े, उनके चरण पड़े, छोटी भूमि तो नहीं है ना ये, यहाँ के कण कण में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस हैं। तो सवेरे उठकर मैं बहुत सुखी हूँ, एक संकल्प करना कोई न भूले, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भूलना ही नहीं, पांच बार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हाथ ऊपर उठा के कर देंगे तो और अच्छा होगा, हाथ ऊपर उठाना माना आनंद पूर्वक दिल की गहरी खुशी से, मेरे जैसा भगवान कोई नहीं। देखो अर्थ इसका समझ ले आप, प्रकृति में ये आवाज गूंजने लगे, चाहे वो मन की आवाज हो चाहे मुख की हो, प्रकृति ही तो सब कुछ दे रही है ना, मैं धन संपदा सोना हीरे सब प्रकृति के तो हैं, तो प्रकृति वही चीजें वापिस करने लगेगी। और भी एक संकल्प है, मैं इस संसार में बहुत धनवान हूं, भूल से भी नहीं कि गरीब हूं, भूल से भी नहीं, सवेरे उठ के तो बिल्कुल नहीं, कभी कहने लगो पानी नहीं आया, उठे आंखों पे पानी डालना था, पानी नहीं है, कैसी तकदीर है मेरी, बिगाड़ दिया खेल। संकल्प करो मैं बहुत तकदीरवान हूं, 3 मिनट में पानी आ जाएगा, 3 मिनट में आ जाएगा। चेंज कर लो संकल्पों को, मैं बहुत भाग्यवान हूं, बहुत सुखी हूं, बहुत धनवान हूं। अच्छी तरह संभालो अपने जीवन में। जो संकल्प पहले 10 मिनट में करेंगे सवेरे, सीधी भाषा में वही होगा, लेकिन खुले दिल से, निगेटिविटी के साथ नहीं कि जेब में तो पैसा नहीं, ऐसे ही खुश हो रहा हूं मैं बहुत धनवान हूं, इससे नहीं काम चलेगा। कौन सा धन दिया बाबा ने? सचमुच जब भगवान अपने बच्चों को कहता है तुम रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, इंग्लिश का शब्द है, संसार में सबसे अधिक धनवान हो, सतयुग में तो है ही, सारे संसार की धन संपदा को इकट्ठा कर लो, अब जितनी दुनिया में है, स्वर्ग के 9 लाख देवताओं में उससे हजारों गुना ज्यादा होगी। पैसे की बात ही नहीं, कोई गिनती ही नहीं, वैसे वैसे करेंसी नहीं, लेन देन सिंपल होगा। जो आप में से बुजुर्ग हो जानते होंगे, बचपन में लोग सब्जी देके जाते थे, अनाज मुट्ठी धो दे देते थे, ये हमने तो खूब देखा किया, पुदीना डाल के गए, एक एक वो बंदी होती है ना, डाल जाते थे सबके घरों में, फिर आते थे एक एक मुट्ठी गेहूं उन्हें दे रहे, सब उनका भर गया, 5 किलो गेहूं हो गया। ये लेन देन था ना भारत में, जिनके घर दूध है जिनके घर नहीं है वो उन्हें दे रहे हैं। छाछ तो सवेरे खूब बढ़ती थी, आजकल बढ़ती है नहीं मुझे पता नहीं, बिक्री का समय आ गया ना, धन का लालच बढ़ गया, कहेंगे 10 रुपए गिलास देंगे, ऐसा हो गया है। हम सब बहुत धनवान हैं, सबसे पहला धन ज्ञान धन, इसको बांट भी रहे हैं हम सब, आप सब देते हो, बस देखना ये है कि सबको सारा ज्ञान नहीं देना है। कई लोग तो ऐसे होते हैं कोई पकड़ में आ जाए फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते, सोचते हैं पता नहीं 2 बार आएगा या नहीं, आज ही सारा दे दो, वो ले या ना ले, वो जान बचाना चाह रहा है, ये नहीं, थोड़ा थोड़ा ज्ञान। अब डिजिटल का जमाना आ गया ना, सब कुछ छोटा होता जाता है, ज्ञान भी थोड़ा थोड़ा। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, आप उसे कहोगे ज्ञान ले लो ये वो, एक अच्छी बात सुना दो उसे, एक ही बात, ताकि उसकी परेशानी हल्की हो जाए, फिर देखो ज्ञान तो आप ही ले लेगा, हमें कहना ही नहीं पड़ेगा। कोई व्यक्ति बहुत टेंशन में है, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का पति मर गया, किसी के कोई बच्चा चला गया, कोई गहरा प्यारा संबंधी चला गया, वो दुखी है, 2-4 अच्छी बातें सुना दो, चित शांत होगा। लोग अच्छी बातें सुनना चाहते हैं ना आजकल, हम सारा ज्ञान न देके ज्ञान का थोड़ा थोड़ा अंश दूसरों को दिया करें, तो ज्ञान खजाना बढ़ेगा। और ज्ञान से हमेशा की बात है लेकिन बड़ी सूक्ष्म है, इसलिए मैं इसको रिपीट करता रहता हूं, ज्ञान मनन से बढ़ती है विवेक शक्ति बुद्धि, और ये बुद्धि अविनाशी रूप से हमारे साथ रहती है पूरा कल्प, हर जन्म में ये बुद्धि हमारे पास रहेगी। तो कितना सुंदर अवसर है, बुद्धि जैसी चाहे बना लो, हर जन्म में होशियार स्टूडेंट रहें, हर जन्म में बुद्धि के धनी रहें, पढ़ाई तो होगी नहीं, ज्यादा पढ़ाई तो होती नहीं थी गुरुकुल में, होती थी, ये तो 100-125 साल का एजुकेशन का इतिहास है। हम हर फील्ड में बुद्धिमान रहें, आपने भी देखा होगा आजकल भी हैं माताएं कई बिना पढ़ी लिखी लेकिन बुद्धिमान, बुद्धिमान सबसे ज्यादा, उनसे राय लो तो काम सफल। मैंने भी देखी ऐसी माताएं, आपने आपके पास भी सभा में बैठी होंगी, पढ़ी लिखी नहीं है, तो पढ़ाई से बुद्धि बनती हो ऐसा नहीं है, विकास तो होता है, लेकिन ज्ञान मनन से, ज्ञान को जीवन में समाने से हमारी बुद्धि दिव्य बनती है, जो सदा हमारे साथ रहेगी, हमारे हाथ में है हम कैसी बुद्धि का निर्माण करें। और ये बुद्धि सबसे मूल्यवान चीज है मनुष्य की, है या नहीं? क्या भरेंगे इसमें? बोलो बोलो, क्या नहीं भरेंगे? सब सोच लो क्या क्या भरा है। तीन प्रश्न हो गए ना, क्या भरेंगे क्या नहीं भरेंगे और हमने क्या क्या भरा है, न जाने क्या क्या भर लिया। अगर कोई मनुष्य सुखी नहीं है तो उसने अपनी बुद्धि में पूछ लो क्या क्या भरा है। मनुष्य के अपने विचार ही तो उसे दुखी करते हैं। मुझे कई भाई भी और बहने भी सुनाते हैं, बीमारियां हैं, खूब बीमारी हैं शरीर में, लेकिन हम तो मस्त रहते हैं, ठीक है तो है, हिसाब किताब चुक तो हो रहा है, ठीक हो जाएंगे। और किसी को जरा सी है, घुटनों में बहुत दर्द है भाई, चला नहीं जाता, मैं तो दुखी हो गई है, पता नहीं कब जान बचेगी इससे, और अपने को श्राप भी दे देती है, लगता है तो मरने पर ही जाएगा, तो पहले से फाइनल किया हुआ, मरने पे ही घुटने दर्द जाएगा, उसे पहले नहीं जाएगा। तो विचारों पर ही है ना, हम क्या सोच रहे हैं बुद्धि में वो भरता जाता है। देखो जो कुछ हम देखते हैं वो हमारी बुद्धि में समाता जाता है, गहराई से जो देखते हैं, ध्यान से जो कुछ देखते हैं, किसी के अवगुण ध्यान से देख लिए, कोई गलत वृत्ति से देख लिया, ये वृत्ति देखो किसे कहते हैं, ये व्यक्ति तो है ही ऐसा, इसको वृत्ति कहेंगे, कैसी फीलिंग है, कैसा दृष्टिकोण है, ये व्यक्ति कभी सुधरने वाला नहीं है, 20 साल से तो हम देखते आ रहे हैं लड़ाई करता है, ये वृत्ति हो गई हमारी। तो जो कुछ हम देख लेते हैं, जिस भावना से देख लेते हैं, बुद्धि में समा जाता है। हमें चेक कर लेना है, ईर्ष्या तो नहीं समा ली है, दूसरों का बुरा हो जाए ये तो नहीं समा लिया है। एक महान आत्मा बोल रही थी, मैं इसके दोनों बच्चों का तलाक करा के ही रहूंगी। वाह कितने सुंदर वचन बोले हैं, और वो अपने को बड़ा प्राउड फील करती है, मैं करके ही छोड़ूंगी। अब मनुष्य को ये तो पता नहीं चलता कि इसका फल भी तुझे मिलना है, और ये भूलना नहीं चाहिए कि जो कुछ हम दूसरों के साथ करते हैं वो हमारे पास आता ही है, किसी का तुरंत, किसी का थोड़े दिन बाद, किसी का अगले जन्म में, उससे कोई बच नहीं सकता। हम दूसरे का बुरा कर रहे हैं, अशांति तो तुरंत हो गई, बुद्धि ने एक गलत चीज ग्रहण कर ली, एक गंदगी भर ली बुद्धि में, तुरंत असर होने लगा, बदबू फैलने लगी है जीवन में, लेकिन उसका फल, बड़ा फल भी मिलता है। तो सुखदाई बन जाएं, सुखी हो जाएंगे। मैं बहुत भाग्यवान हूं, ये संकल्प सवेरे करने लगे, भाग्य चमकने लगेगा। बाबा आते हैं, अभी मुरली आई थी, आज भाग्य विधाता बाप अपने बहुत भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं, जिनके भाग्य का सितारा चमक रहा है। तो भगवान को तो हम सब भाग्यवान नजर आते हैं, और हम अपने को भाग्यवान देखते हैं या नहीं? जो हमको जानता है उसे पता है इन जैसा भाग्यवान कोई नहीं, और हम अपने केवल वर्तमान छोट-छोट चीजों को देखकर अपने भाग्य को भूले रहते हैं। तो सवेरे उठकर इस भाग को जगाना है। हम तो जग गए, सवेरे भाग्य को जगाना है इस संकल्प से। क्लियर है ना सभी को? तो आपको कहना ही नहीं पड़ेगा हमारा भाग्य ऐसा है, भाग्य हमें साथ नहीं देता। सबसे गहरी बात मुरली में आती है, मुझे वो बहुत गहरी लगती है। तुम समय के क्रिएटर हो, समय को रचने वाले, समय का प्रभाव तो ज्योतिष विद्या तो सारी इस पे ही है। और ऐसे नहीं कि ज्योतिष विद्या झूठी है, कोई कहे तो पंडितों का खाने कमाने का धंधा है, ऐसा नहीं है। वो एक परफेक्ट साइंस है, जानने वाले कैसे हैं वो अलग बात है। समय का प्रभाव, ठीक टाइम पे काम किया जाए सफल होता है, वो टाइम बिता दिया जाए फिर वो फल नहीं मिलता। एक बंदर बंदरी कहानी आपने सुनी होगी, थोड़ा हंस भी लें और समय के महत्व को समझ भी लें। दोनों पेड़ पर बैठे थे, आकाशवाणी हुई, नीचे कूद जाओ परी और परी परी ज्यादा बन जाओगे। बंदरी ने देरी नहीं लगाई, तुरंत कूद गई, परी बन गई। बंदर ने देखा ये बंदरी तो परी बन गई, मैं भी कूद जाऊं। इतने में आधा मिनट बिता दिया, टांग टूट गई गिरते ही। भगवान को गाली देने लगा, ये क्या बंदरी को परी बना दिया, तुमने ही तो कहा था कूद जाओ। कहा वो टाइम था, तुमने टाइम बिता दिया। टाइम का बड़ा महत्व है, और सबसे ज्यादा महत्व तो संगम के समय का है। बहुत आत्माएं हम में से ये नहीं समझ पा रही हैं कि बाबा हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, वो हमें क्या क्या देने आ गया है। हम जरा सा तो जोड़ लगाएं, जिसको बाबा कहते हैं एक कदम तो बढ़ाओ, मैं वो हमारे लिए क्या क्या करने को तैयार है। वो तो ये चाहता है कि बस बच्चे थोड़े पंख फड़फड़ाएं तो सही, उड़ा तो मैं आप ही लूंगा, लेकिन कई पंख फड़फड़ाते नहीं। तो अपने ब्रेन पर किसी चीज का दबाव नहीं रखना है। समय के क्रिएटर कैसे हैं हम? ब्रेन पर दबाव, अंडरलाइन कर लें, दबाव बना रहता है मनुष्य के दिमाग पर सदा ही, इस बात का, उस बात का, किसी के शब्दों का, किसी हार जीत का, किसी निंदा स्तुति का। इस दबाव को जल्दी से जल्दी हटाना सीखते चलें, ज्ञान से, कोई ड्रामा के ज्ञान से, कुछ बाबा हमारे साथ है, कुछ सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, भिन्न भिन्न संकल्पों से हम इस दबाव से मुक्त होते चलें। समय के क्रिएटर हम कैसे हैं? आज भी मैं सोच रहा था, मैं मुरलियों की अच्छी अच्छी पॉइंट्स लिख के रखता हूँ अपने पास, अव्यक्त मुरलियों की खास पढ़ लेता हूँ एक मिनट ही, तो कई सुंदर बातें मिल जाती हैं। आप भी ये काम किया करें, जो मुरलियां आती है अभी बाबा की भी चलेंगी, बाबा का सीजन भले ही सब नहीं आएंगे लेकिन मुरलियां चलेंगी, गहरी मुरली होती है। तुम समय के क्रिएटर हो, समय तुम्हें प्रभावित करे नो, तुम्हें समय को बदलना है। अति गहरी बात है, समय तुमसे पुरुषार्थ कराए। कोरोना आ गया अब तो तेज पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, बहुत ठंडे रह गए अब तेज करो, चलो वो भी अच्छा कर तो ले, कईयों ने तो वो भी नहीं किया। लेकिन हम ऐसा तेज पुरुषार्थ करें कि कोरोना हमें टच ही न कर पाए, हो सकता है या नहीं? कोरोना मैंने एक उदाहरण दिया, आने वाली बहुत सारी परिस्थितियां हमारी खुशी न छीन ले जाएं, हमें परेशान न कर दें, हम उस चक्रव्यूह में न उलझ जाएं। चक्रव्यूह बन जाएगा ना, ऐसी परिस्थितियां होंगी कि उसे निकलना ही मुश्किल होगा। तो हम समय पर प्रभाव डालने वाले बन जाएं, और ये होगा, बोलो कौन बताएगा ये कैसे होगा? बोलो, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से। समय हमारे अनुकूल चलने लगे, जिसको लोग कहते हैं ना इस ग्रह का प्रभाव, उस ग्रह का प्रभाव, और भगवान ने कह दिया तुम्हारे ऊपर कौन से डसा। अब भगवान की माने या जो राहु की बता रहे उनकी माने, सोच लो। मैं भी सोचता हूँ, अब होती तो है समय अनुसार, भैया फलानी की मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं तो सुनता रहता हूँ कि अब शुक्र की दशा चल रही है, बुद्ध की चल रही है, गुरु की चल रही है, भगवान ने कहा बृहस्पति की चल रही है। अगर हम इस नशे में रहने लगे तो सारी दशाएं बदल जाएंगी। तो दशाएं क्या है देखो सूक्ष्म रूप से समझ ले, गहरी गहरे राज की बात आपके सामने है, जो समझ सके बहुत अच्छा होगा। जो असरतन है इस सृष्टि में, सबसे महान आत्माएं है ना ये आठ, एक शिव बाबा, आठ और बाबा मामा, दो डिक्लेयर्ड, बाकी छह और। ये असरतन, इनके वाइब्रेशंस, इनकी प्योरिटी, इनका योग, इनके पुण्य कर्मों के वाइब्रेशंस, ये सभी ग्रह स्वयं में समाते रहते हैं और वही वापिस करते रहते हैं फिर। इसलिए बाबा ने गहरी बात कही हुई है, अति गहरी, सृष्टि की स्थिति का आधार तुम्हारी स्थिति है। हमारी जैसी स्थिति वैसी ही सृष्टि की स्थिति। मोटे तौर पर हम सतो प्रधान तो सृष्टि सतो प्रधान, हम तमो प्रधान तो प्रकृति भी तमो प्रधान, सृष्टि भी तमो प्रधान। तो हमारी स्थिति आधार है सृष्टि की, प्रकृति की, स्थिति की। तो इन असरत्नों के वाइब्रेशंस, इन आठों ग्रहों को ये उनको समा लेते हैं अपने में और वही पढ़ते रहते हैं संसार पे। ये जो असरतन है इनसे ही संसार की आत्माएं जुड़ी रहती हैं। अब संसार की आत्माओं को आठ भागों में बांट लो, एक हिस्सा एक आत्मा से जुड़ा है, दूसरा दूसरे से। अब असरतनों की स्थिति भी नीचे उतर आई थी तो उनके भी पावरफुल वाइब्रेशंस तो ऊपर नहीं पहुंच रहे थे, संगम आया तो फिर पहुंचने लगे। तो हम ही ग्रहों के मालिक हैं, जिसको बाबा कहते हैं प्रकृति के मालिक हो। ग्रहों का प्रभाव हम पर पड़ता है लेकिन अब हमें अपने पावरफुल वाइब्रेशन से ग्रहों को भी सतो प्रधान बनाना है। सतयुग में राहु की दशा होगी, बोलो मंगल की दशा, किसी की भी दशा नहीं रहेगी, है ना ये बात। बस जो बाबा ने बृहस्पति की दशा चालू कर दी वो कंटिन्यू रहेगी। तो सत्युग त्रेता में क्या, द्वापर कलयुग में भी राजा को मात पिता माना जाता है। सत्युग में तो वो मात पिता जैसे होंगे, प्रजा उनका परिवार, कोई कभी भी जा सकेगा, अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। और कलयुग तक भी राजाओं में ये प्रथा रही, कोई बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं, जिसको जाना है पहुंच जाते थे न्याय कराने के लिए, कोई बात करने के लिए। तो ये असरतन और फिर 108 मात पिता बन जाते हैं, सबके पालना करते हैं ये सबकी, सारे संसार की, सभी धर्मों की, आत्माओं की। तो हम सभी अपने को महान बनाएंगे, हमारे वाइब्रेशन संसार का कल्याण करें, कहीं भी उलझेंगे नहीं, चिंतन करेंगे मधुबन में आके, हम कहीं उलझ तो नहीं गए हैं। कुछ बातें बिना मतलब की बातें हैं जिसमें मनुष्य उलझता है, कुछ मतलब की भी हैं, परिवार में कुछ हो ही गया उलझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें बिना मतलब की होती हैं जिसमें मनुष्य उलझा रहता है। अपने को निकाल लेना है और याद रखना है हम बातों की उलझन से बाहर निकल जाएंगे, अच्छे अभ्यास करेंगे तो बातें भी स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। हम क्रिएटर हैं, ठीक है। सभी बहुत अच्छा चिंतन करके बहुत कुछ लेकर जाएंगे यहां से। ओम शांति।